आगे जी सूरह तलाक, जिसको निसाए सुगरा भी कहते हैं, 65 नंबर की सूरह, 12 आयात हैं। इसके बारे में एक रिवायत सुन लीजिए, बुखारी की रिवायत है 4908। अब्दुल्ला बिन उमर ने ख़बर दी कि उन्होंने अपनी बीवी आमिना बिनते गफ़ार को जबकि वो हायजा थी तलाक दे दी। हज़रत उमर ने रसूलुल्लाह से जाकर इसका ज़िक्र किया। अल्लाह के नबी तो इस पर बहुत गु़स्से में आए और फरमाया, उनसे बोलो कि अपनी बीवी से रुजू करें और इन्हें अपने निकाह में लें, यहाँ तक कि जब वो अपने मंथली साइकिल से पाक हो जाएं, फिर पीरियड्स आएं और फिर वो पाक हो जाएं। अब अगर वो तलाक देना मुनासिब समझें तो इसकी पाकी यानी तोहर के ज़माने में इनके साथ हम बिस्तरी किए बग़ैर तलाक दे दें। बस यही है वो वक्त जिसमें अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया है कि उनको हालत तोहर में तलाक दे दें। किसको याद रहता है, आटे में नमक ज़्यादा, खाने में नमक तेज़ हो गया, मिर्चें आ गई और चलते चलते पाँव अटक गया, तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक है, पूरी गर्दान। किसी ने कहा तुझे तलाक, तीन तलाकें, फिर तू मेरे बाद किसी और से निकाह करके वापस आए, फिर मेरे साथ तेरा निकाह, मैं फिर भी तलाक देता हूँ। भई ये छुरी है कि आपकी ज़ुबान है। रुको नंबर 17 है, आयत नंबर 1 से 7। जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसके लिए काफ़ी है। या युहन नबी यु इज़ा तल्लक तुम निसा फ़तल्लक़ूहुन्न लिद्दतिहिन लिद्दतिहिन्न वख़्सुलिद्दा। ऐ नबी, अपनी उम्मत से कहो कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो इनकी इद्दत के दिनों में या इद्दत के आगाज़ में तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो। ना तुम इन्हें इनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकलें। हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठें और ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए उसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह कोई नई बात पैदा कर दे, यानी दोनों में रुजू हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए। बस जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के करीब पहुंच जाएं, तो इन्हें या तो कायदे के मुताबिक एक निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक इन्हें अलग कर दो और आपस में दो आदिल शख्सों को गवाह कर लो और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो और जो अल्लाह से डरता हो। अल्लाह उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका इसे गुमान भी ना हो। और वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह इसे काफ़ी होगा। अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से नाउमीद हो गई हों, मीनोपॉज की तरफ इशारा, अगर तुम्हें शुबा हो तो इनकी इद्दत 3 महीने है और इनकी भी जिन्हें अभी हैज आना शुरू ही नहीं हुआ, यानी प्यूबर्टी की एज से पहले की एज, और हामिला औरतों की इद्दत इनका वज़ह हमल है, यानी वो 9 माह भी हो सकता है और वो 9 दिन भी हो सकता है, यानी जो ही बच्चा डिलीवर हो जाएगा ऐसी औरत इद्दत से निकल जाएगी। और जो शख्स अल्लाह से डरे अल्लाह इसके हर काम में आसानी करेगा। आप देख रहे हैं कि इन मामलात में तकवा का कितना जिक्र है, पीछे भी इसी पे बात हुई थी, यहाँ भी है सूरह निसा में भी, यानी तकवे के बगैर शौहर बीवी साथ नहीं रह सकते, बाकियों की तो बात छोड़ दीजिए। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा है, और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके गुनाह माफ़ कर देगा और इसे बहुत भारी अजर देगा। तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो वहाँ इन तलाक वाली औरतों को रखो और इन्हें तंग करने के लिए तकलीफ़ ना पहुँचाओ, और अगर वो हमल से हों तो जब तक बच्चा पैदा हो ले इन्हें खर्च देते रहा करो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम इन्हें इनकी उजरत दे दो और बाहम मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो, और अगर तुम आपस में कशमकश करो तो इसके कहने से कोई और दूध पिलाएगी। कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए और जिस पर इसके रिस्क की तंगी की गई हो इसे चाहिए कि जो कुछ उसे अल्लाह ने दे रखा है इसी में से अपनी हसब हैसियत दे। किसी शख्स को अल्लाह तकलीफ़ नहीं देता मगर इतनी ही जितनी ताकत उसे दे रखी है। अल्लाह ताला तंगी के बाद आसानी और फरागत भी कर देगा। क्या पता चला कि अल्लाह ताला से डर के रहना है, अपने ऊपर जुल्म नहीं करना, अल्लाह ताला और आखिरत के दिन की उम्मीद रखनी है, आपस में मशवरा करना है, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है और अल्लाह ताला के लिए ठीक गवाही पर कायम रहना है। अब देखिए, थोड़ी सी बात करूँगी तलाक पे। ये आप सब बड़े आराम से ठंडे दिल दिमाग से मेरी बात सुने और समझें, क्योंकि इसमें कितने लोगों के घर बस जाएंगे। देखिए, बहुत कम लोग ये जानते हैं, एक दफ़ा मर्द तलाक दे दे कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, और फिर चुप कर जाए। साथ रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, बीवी तैयार होगी, सजेगी संवरेगी, शौहर की खिदमत करेगी, घर को साफ रखेगी, इंटीमेसी शो करेगी, उसको अपने आप की तरफ माइल करेगी, एनी टाइम वो रजू कर सकता है। घर की बात घर में ही रह जाएगी। 3 महीने तक दोनों किसी को कानो कान खबर ना होने दें कि ये इसको एक दफ़ा तलाक बोल चुका है। जिस दिन तीसरा पीरियड शुरू हो गया या ख़त्म हो गया, दोनों का हिसाब होता है, यानी 3 माह पूरे हुए, अब मारूफन बात कर रही हूँ, उसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे। तलाक हो गई, दैट्स इट। क्या ज़रूरत है 3 दफ़ा तलाक कहने की? देखिए, मुर्गी को ज़िबा कर रहे हैं, तो जब एक दफ़ा छुरी तेज़ी से चला दी तो गर्दन कट गई या अलग हो गई या उसकी रग कट गई, तो कोई ज़रूरी है कि 3 दफ़ा चॉप करें उसको? ये बात नहीं पता लोगों को। आप कहेंगे फ़र्क क्या पड़ता है? कुरान ने यही तरीका दिया है तलाक का। ये जो इद्दत है ना, तो इद्दत और तलाक की जो 3 महीने, ये साथ साथ चलते हैं। और ये शौहर के घर में, हमारे तो लड़की पहले अम्मा के घर पहुंची होती है, कई किस्म की पंचायतें बीच में आ चुकी, हकम इधर के उधर, और सारा ख़ानदान कान लगा के बीबीसी न्यूज़ की तरह सुन रहा होता है कि अब क्या हुआ और क्या हुआ। गलत है, इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसको तलाक़ रजई भी कहते हैं और इसको तलाक़ हसना भी कहते हैं। 3 माह होने के बाद दोनों आज़ाद, औरत दूसरी जगह, कोई उसको रिश्ता मिलता है, उसके वाली वारस देखते हैं, अच्छा कर दें, मर तो वैसे ही कहीं भी कभी भी कर सकता है। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजरे, ना उसको मिला ना उसको मिला, उसने भी कोई और नज़रों में रखा हुआ था, इसका भी कोई नज़र थी, नहीं मिली, दोनों को दोबारा बिठा कर मौलवी साहब से निकाह पढ़ा दो, विदाउट एनी अदर पर्सन दोनों की दोबारा शादी हो सकती है। अगर किसी ने तलाक देनी है तो ये दे, ये खूबसूरत तलाक, इसको कहते हैं तलाक हसना। मर्द बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 तलाक़ें दे सकता है। बस अत तलाक मर्रतान, वहाँ भी मैंने आपको चार्ट्स के साथ दिखाया था, आप दूसरे पारे का ऐसा खोल लें। बहरहाल, हमारी उम्मत का हाल यह है, ना इनको शादी करनी आती है और ना तलाक देनी आती है। शादी करना सीखा इंडियन फिल्मों से, एक एक स्टेप बाय स्टेप, थीम मैरिज, ये वो, हत्ता के जोड़े भी दिखाते हैं कि ये वो जो हीरोइन ने पहने ना, ये हमारी बहू का जोड़ा बना दो, आसान हो गए काम। और तलाक देनी हमने सीखी है पाकिस्तानी, बल्कि पंजाबी फिल्मों से। तलाक है, चीख हो रही है और ऊपर से बादल गरज रहे हैं, और औरत कदमों में पड़ी है, सरताज मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, और दरवाज़ा खोल के उसको धक्का देता है बाहर के, तो अब गैर हो गई है, तो मेरे साथ नहीं रह सकती। फिल्मों और शादियों और गानों और ड्रामों से जब आप ये कुछ सीखें, और तलाक और घर, आपका मुआशरा, देखिए ये घर है, अल्लाह ताला इससे भी बड़ा घर थे, इसको छोड़कर आप दूसरे में चले जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे भी अच्छा ही होगा ना। अल्लाह ना करे जिनके घर देखे कि जलजले में गिर गए, दोबारा बन गए होंगे ना। लेकिन औरत और मर्द का ताल्लुक, आप और मैं इधर इस वक्त किस भरोसे पे बैठे हैं, कभी आपने सोचा? यदि मैं हमेशा औरतों को कहती हूँ, क्यों बड़ी बड़ी चीज़ों पे जाती हो? तुम्हें दूर की चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, तुम्हारी करीब की नज़र ख़राब है। और मर्दों का भी यही हाल होगा, मेरा तो उनसे वास्ता नहीं है। तो घरों में सुकून लाइए और ये मसले आम कीजिए। हमने उम्मत सारी को उलझा दिया, घन चक्कर बना दिया तलाकों, एक तलाक 3 तलाक, एक नशिस्त में 3 में, और लड़ाई झगड़ों का जरिया बना दिया। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। सिर्फ दौरे कुरान में आपको ये बात समझ आ गई है, और आप सोचें जब आप इसको तफसीर कोर्स में सीखेंगी तो कितने घर बचेंगे। अल्लाह हमारी उम्मत को समझ दे दे। आगे है जी रुकू नंबर 18, आयत नंबर 8 से 12। अल्लाह ताला जन्नतों में दाखिल करेगा, वकाई ये मिन करियत नतत अन अमरी रब्बी हा, और बहुत सी बस्ती वालों ने अपने रब के हुक्म से और इसके रसूलों से सरताबी की, तो हमने भी इनसे सख्त हिसाब किया और इन्हें अजाब दिया, अनदेखा सख्त अजाब, बस उन्होंने अपने करतूत का मज़ा चख लिया और इंजाम-ए-कार इनका खसारा ही हुआ। इनके लिए अल्लाह ताला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ईमान वालों, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नसीहत उतार दी है, यानी रसूल जो तुम्हें अल्लाह के साफ साफ अहकाम पढ़कर सुनाता है, ताकि इन लोगों को जो ईमान लाएं और नेक अमल करें वो तारीकियों से रोशनी की तरफ ले आए, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह इसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं और जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगी। बेशक अल्लाह ने इसे बेहतरीन रोज़ी दे रखी है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए, फिर इसी के मिसल ज़मीनें भी, इसका हुक्म इनके दरमियान उतरता है, बस तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपने इल्म के एतबार से घेर रखा है। क्या पता चला कि अपने रब की वुसअतों को अगर तुम पहचान गए तो तुम्हारी ज़िंदगी से मायूसी, डिप्रेशन और परेशानी सब निकल जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी में सुख के सांस लोगे। क्या सीखा? रसूलों के हुक्म से सरकशी नहीं करनी, अल्लाह से डर के रहना है, ईमान लाना है और नेक आमल करने हैं। तो सूरत तलाक का फिर मैसेज क्या था? इल्म लीजिए, किसी लड़की की शादी मत कीजिए। आपका बेटा, आपकी बेटी अगर अनमेरिड है, कतन उनकी शादी ना करें। उनको पहले बिठाइए, ए टू जी, शादी से पहले, शादी के बाद, घर बसाने, और खुदा न खास्ता अगर नहीं मिजाज मिले तो उनको बिठा कर पहले बातें तो कीजिए। आज तो अल्लाह माफ़ करें कि ये ग्लास शायद पक्का होगा, इट्स नॉट एनफ, इतना फ्रेजल नहीं है जितने आज हमारे रिश्ते फ्रेजल हो गए। इधर शादियाँ होती हैं, उधर टूट रही हैं, करोड़ों के खर्चे किधर गए? भाई आपका तो अभी कर्जा भी नहीं उतरा, और भी माँ बाप रोते हैं, क्या करें, हमने इतने अरमान देखे, हमने इतने चाव देखे। हमारा ये इंस्टीट्यूट बहुत वीक है, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। आगे आखिरी सूरत है 28 पारे की, और मैंने जिक्र कर दिया था कि 28 पारा जो है ये घरेलू सुपारा है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, घरेलू फिल्में, सबक आमोज फिल्में, और लोगों ने जो अदब अखलाक या कोई घरदारी सीखी वो फिल्मों से ही सीखी। क्या ज़रूरत है जब आपका कुरान आपको सिखा रहा है? तो सूरह तहरीम 66 नंबर की सूरह है, 12 आयतें हैं। तहरीम से हुरमत, हरामा, हराम, वही लफ्ज़ है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल ज़िंदगी, प्रॉफिट एट होम, एक ऐसा वाक़या जो बिल्कुल घर का वाक़या, जिसको आप कहते हैं घर से बाहर ना जाए, अल्लाह ने नबी को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाते हुए क़यामत तक के लिए लोगों की हिदायत का ज़रिया बना दिया। क्योंकि जिनके दर्जे हैं सिवा, उनकी मुश्किलें हैं सिवा। अगर आपको भी अल्लाह ने शहर में, माशरे में कोई इज्जत का मुकाम दिया ना, आप कुरान के नाम के साथ अगर नथी हो गई हैं ना, पढ़ने वाली हैं या पढ़ाने वाली हैं, या वहाँ जाकर कोई पानी रखती हैं, या आपके घर में ये काम हो रहा है, तो वल्लाह ही आपने, मैंने लोगों को अपने किरदार से एक चीज़ ज़रूर दिखानी है कि हम क्यूपिड कपल है, होम स्वीट होम है। हमारे घर में कोई झगड़ा ही नहीं है, मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ ही नहीं है, हमारे बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं। हैप्पी होम इसको कहते हैं, आपका एक हैप्पी होम है इधर, वैसे चाहे पता चले वहाँ सारे नॉन हैप्पी लोग जा रहे हैं, है ना? नहीं, घर अच्छा रखिए। देखिए, आपके मेरे बस में बस घर को ठीक करना है, हम पार्लियामेंट को ठीक नहीं कर सकते, सॉरी, हम बैंकों का निज़ाम फ़िलहाल नहीं चेंज कर सकते, अपने घर ठीक कर लीजिए। और दीन की बरकत, कुरान की बरकत, हिकमत वाली बीवी और मिजाज शिनास बीवी, मौका महल देखी हुई बीवी जिस मर्द को मिल जाए वो बादशाह है। आइए पढ़ते हैं, या यूहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक। टॉपिक क्या है? अल्लाह तुम्हारा मौला है, आयत 1 से 7, रुकू नंबर 19। ए नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है, आप इसे क्यों हराम करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की रज़ा चाहते हैं, यानी अपनी बीवियों की खुशी के लिए ये करते हैं? और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तहक़ीक़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए कस्मों को खोल डालना मुकर्रर कर दिया, और अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज़ है, और वही पूरे इल्म वाला, हिकमत वाला है। और याद करो कि जब नबी ने अपनी बाज़ औरतों, यानी बीवियों से एक पोशीदा बात कही, पर जब उसने इस बात की खबर कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को इससे आगाह कर दिया, तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गए। फिर जब नबी ने अपनी बीवी को एक बात बताई तो वो कहने लगी कि इसकी खबर आपको किसने दी? ये सारी औरतें पूछती हैं, ये आपको किसने बताया? लगता है अपने घर में कोई कैमरा लगाया हुआ है, फ़लाँ ने बताया होगा, उसने बताया होगा। अच्छा, बीवी बीवी होती है चाहे नबी की हो, क्योंकि औरत होती है। वो कहने लगी, इसकी खबर आपको किसने दी? कहा, सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतलाया। ए नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, और अगर तुम नबी के ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद करोगी, यानी ग्रोहबंदी करोगी, बस यकीनन इसका कारसाज़ अल्लाह है और जिब्राइल हैं और नेक ईमानदार, और इनके अलावा फ़रिश्ते भी मदद करने वाले हैं। अगर वो पैगंबर तुम्हें तलाक़ दे दें तो बहुत जल्दी इन्हें इनकार अब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियाँ अनायत फरमाएगा, जो इस्लाम वालियाँ, ईमान वालियाँ, अल्लाह के हजूर झुकने वालियाँ, तौबा करने वालियाँ, इबादत बजा लाने वालियाँ, रोज़े रखने वालियाँ होंगी, बेवा और कुंवारियाँ। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर, जिस पर सख्त दिल, मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह ताला देता है इसकी नाफरमानी नहीं करते, बस जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं। اے کافرو آج تم عذر بہانے مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ تھا جی واقعہ۔ اللہ کے نبی بہت نفیس، ڈیسنٹ اور ہائیجینیکلی ہی واز ویری گڈ پرسن۔ سفر میں بھی آپ کے پاس عطر، سرما، کنگھی اور تیل ہوتا تھا۔ ایک چھوٹی سی بک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، پڑھ کے دیکھیے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ جو دیندار کا ایک عجیب و غریب گٹ اپ آ گیا ہے نا، اس نے بھی بہت ہی معاشرے میں بدنظمی پیدا کی ہے۔ یہ نیک بہت ہیں اس لیے کنگھی نہیں کرتے، یہ متقی بہت ہیں اس لیے کپڑے نہیں بدلتی۔ پسینے کی بو آئے، لہسن کی بو آئے، پیاز کی بو آئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کریں، نیک ہی بہت ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ہے، غلط طریقہ۔ حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی زینب بنت جحش کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں تھوڑی دیر لگا دیتے، ٹائم زیادہ لگ جاتا۔ پھر میں نے اور حفصہ نے ایسے کیا، یعنی اصل میں ایک سوکن کے سکناپے میں دو بیویوں نے آپس میں ایکا کر لیا، ایکا سمجھتے ہیں، متفق ہو گئیں کہ چلو میرے بھی پاس نبی آئیں گے تو میں کہوں گی اللہ کے نبی آپ سے کوئی سمیل آ رہی ہے، تو میری بات پہ ہو سکتا ہے وہ غور نہ کریں، جب آپ کے پاس آئیں گے آپ بھی یہی بات کریں گی تو ظاہر ہے آپ سوچیں گے۔ خیر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ وہاں سے آئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی کہ آپ نے پیاز کھائی ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو تو بدبو بڑی ناپسند تھی، آپ نے کہا اچھا میں نے تو وہاں شہد پیا تھا، چلو اللہ کی قسم آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، میں نے قسم کھا لی، لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ نبی اپنی بیوی کے لیے شہد چھوڑے، اور آج کا مرد اپنی بیوی کے لیے سگریٹ نہ چھوڑے، تمباکو اور پان نہ چھوڑے، اور اس کے پاس سے جتنی مرضی رنگ برنگی سمیلیں آتی رہیں وہ کہ کیا کرو، چپ کرو میں تمہارا شوہر ہوں، چپ کرو پاؤں کی جوتی نہیں بولتی، غلط طریقہ ہے۔ دیکھیے یہی بات ہے کہ جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے ذہنوں میں بڑے ہینڈسم شوہر آتے ہیں، کلین شیپڈ، 3-piece suit، ویل آف دس دیٹ، اے بی سی، اور اسپیشلی جب ہم کسی ویسٹرنائزڈ کنٹری میں جا کر یا ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک مسجد کے نوٹس بورڈ سے میں نے خود ایک اسٹوری پڑھی تھی، اور اس کا ٹاپک کتنا اٹریکٹیو تھا کہ وہ لڑکی جس نے لکھا تھا کہ یہ میرا میسیج ہر اس لڑکی کے لیے ہے جو کسی نان مسلم سے شادی کے خواب دیکھتی ہے، اور پھر اس نے اپنی سٹوری لکھی بھی تھی، کہتی میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا کیونکہ جس لڑکے سے مجھے محبت تھی وہ نان مسلم تھا، میری فیملی جو نہیں تھی کہ اس پہ شادی کرے۔ آج کل کی فیملیز، آج کل کے پیرنٹس اب لبرل ہو گئے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، پہلے نہیں تھے کرتے۔ کہتی خیر میں سب کو چھوڑ کر، میں تو اس کی محبت میں پاگل تھی، آ گئی اس کے گھر۔ خیر اس کے بعد وہ کہتی ہے پھر جو میں نے اپنے شوہر کے پرسنل میٹرز دیکھے، انتہائی گندہ، غلیظ، نہ نہانے کا پتہ، نہ استنجے کا پتہ، اور جو روز شراب پی کر آتا تھا اور بیڈ کے اوپر وہ کہتی جو وومٹ کرتا تھا کہ میں اس کی گندگیاں سنبھال سنبھال کے تھک گئی، پھر مجھے مارتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی بھی آپ دور سے ان چیزوں کو دیکھ کر اٹریکٹ نہ ہوں۔ راز کی بات بتاؤں، جو جتنا نیک ہوگا، جو جتنا یغد من افساریم پہ عمل کرے گا نا، وہ اپنی بیوی کے حق میں بڑا اچھا ہوگا۔ اس کو اپنی بیوی ایسی بھی ہوگی تو غور لگے گی، اور وجہ پتہ کیا، اس نے کوئی دیکھی نہیں۔ جس مرد نے کبھی کوئی لڑکی دیکھی نہیں ہے، غیر محرم کی بات کر رہی ہوں، اس کو تو جو بیوی لا کے دے دی ماں نے، اس نے کہا نا یہ تو آپ نے مجھے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لا دی۔ جو مرد پہلے ہی نظروں کی حوث پوری کر چکے، جو اپنے سارے جذبات باہر ارد گرد دیکھ چکے، ان کو بیویاں نہیں اچھی لگتی۔ اور سیم تھنگ دوسری طرف بھی ہے، شریف اور نیک بچی ہوگی نا، اس کا اپنا شوہر دنیا کا سب سے اچھا لگے گا۔ ایک عورت تھی تو کوئی بات ہو رہی تھی، کہنے لگی میرے میاں کو نظر لگ گئی ہے، تو سہیلی نے کہا لگی کدھر ہے، اس میں ہے کوئی چیز جس میں نظر لگے، کہتی میرا میاں گل فام شہزادہ۔ تو بیوی سے پوچھیں نا وہ کیا ہوتا ہے، ماں سے پوچھیں یا بیوی سے پوچھیں، تو اپنے شوہروں سے پیار کریں۔ جب ایک عورت اپنے میاں سے لڑتی ہے نا، تو جنت میں جو اللہ نے اس کے لیے حور رکھی ہوئی نا، وہ اس عورت کو بد دعا دیتی ہے کہ میرا شوہر تھوڑے عرصے کے لیے تیرے پاس آیا ہوا ہے اور تو اس سے لڑ رہی ہے، ان قریب یہ تجھے چھوڑ کے مجھے ملنے والا ہے۔ تو پھر آج جا کے کیا کرنا ہے، کوئی پھول ہیں تو ایک ایک پھول باغ میں سے دے دیجیے گا، تاک رات بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ شہزادیاں بنے، پریاں بنے۔ وہ ہماری ایک ٹیچر ہے، ابھی بھی زندہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ کہتی تھیں او اللہ کی بندیوں، جب رات کو میاں کے آنے کا وقت ہو تو پین اوڑھ کے پریاں بنا کرو، کیوں کہ وہ باہر بڑی پریاں دیکھ کر آتا ہے، تو اگر تم گھر میں گندی مندی ہوئی تو تمہیں دیکھ کے اس کا دل خوش ہو نا۔ دیکھیے حدیث ہے کہ جو عورت کی خوبی ہے نا، اس میں پہلی خوبی بتا کیا، کہ اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے اس کو۔ अपने शौहर की पसंद के रंग पहनिए, उसके मिजाज का एक दफ़ा बन के तो देखिए, फिर वो आपके पीछे पीछे फिरेगा। वो क्या कहता है, महबूब आपके कदमों में। कोई वजीफा? मुझसे भी पिछले दिनों किसी ने पूछा था कोई वजीफा बता दें, तो वजीफे तो मैं रमज़ान के बाद ही बता सकती हूँ, इंशाल्लाह ईद के दिन हम वजीफे बता देंगे आपको। चलिए, तौबा करनी है, मुसलमान है अगर तो उसको कायम रखना है, ईमान को बढ़ाना है, फरमाबरदार होना है, इबादत करनी है और अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाना है। अब देखिए क्या खूबसूरत क्लाइमेक्स पे पारा पूरा हो रहा है। 28 पारे का आखिरी रुकू है, 20th रुकू, 8 से 12 सूरह तहरीम ख़त्म हो रही है। जन्नत के घर का सवाल करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, पक्की सच्ची खालिस तौबा करो अल्लाह के सामने, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिसके नीचे नहरें जारी हैं, जिस दिन अल्लाह ताला नबी को और ईमानदारों को और जो इनके साथ हैं रुसवा न करेगा, इनका नूर इनके सामने और इनके दाएं दौड़ रहा होगा। ये दुआएं करते होंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना, ए रब हमारे हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, यकीनन तो हर चीज़ पर कादिर है। ए नबी, कुफार और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो, इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने कुफार के लिए नूह की और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई, ये दोनों हमारे बंदों में से दो शाइस्ता और नेक बंदों के घर में थी, फिर इनकी उन्होंने खयानत की, पस वो दोनों नेक बंदे इनसे अल्लाह के किसी अजाब को रोक ना सके और हुक्म दिया गया कि और तो दोजख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। हज़रत नूह और हज़रत लूत की बीवियों की कहानी है ये। और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फ़िरौन की बीवी की मिसाल बयान की, जबकि इसने दुआ की कि मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फ़िरौन से और इसके अमल से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से खुलासी दे। और मिसाल बयान फरमाई मरियम बिनते इमरान की, जिसने अपनी नामुस की हिफाजत की, फिर हमने अपनी तरफ से इसमें जान फूंक दी और इस मरियम ने अपने रब की बातों और इसकी किताबों की तस्दीक की और इबादत गुजारों में से थी। तो चार औरतें, वो कहते हैं ना चार औरतें चार कहानियाँ, अल्लाह ताला ने यहाँ दो औरतें हज़रत नूह और लूत की बीवी को एक सिंबल बना दिया शादीशुदा औरतों के लिए। और क्या पता चला कि दोनों के शौहर नेक क्या थे, बल्कि नबी थे, लेकिन जिसके अमल ने उसको पीछे छोड़ा उसका नसब उसके काम नहीं आएगा और दोनों नहीं बच सकी। कितनी बड़ी हकीकत है। आप कहते हैं मेरे शौहर हाफिज़ हैं, मेरे शौहर आलिम हैं, मेरे शौहर इतकाफ़ में बैठे हैं तो मुझे भी अजर मिल रहा है, मेरे शौहर रोज़ा रख लेंगे तो मुझे भी अजर है, इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपको अपने आमाल की भी फ़िक्र करनी होगी। आप देखिए कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को इन चीज़ों में रखेंगे ना, इन चीज़ों को पढ़ते वक्त, तो इंशाल्लाह अमल भी बढ़ेगा। फिर इसी तरह आप देखिए हज़रत आसिया फिरौन की बीवी, दुनिया के सारे शौहरों की दौलत मिल जाए और सारे शौहरों का जुल्म मिल जाए तो फिरौन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन बात समझ आ गई तो रब्बिब निलींदा का भई तनफिल जन्ना। कोई औरत उज़र दे के बच नहीं सकती कि मेरे शौहर ये चाहते, मेरे शौहर ये चाहते। आप यकीन करें अल्लाह के नबी ने भी ये बात कही है, मैं अपने पास से नहीं कहूँगी। अच्छा भला मर्द जो बाहर की दुनिया में बहुत जीनियस, एक एक डील में उसको करोड़ों की बचत होती है, जिधर से गुजरता है यस सर बॉस बॉस, खटो बचो गाड़ी ड्राइवर, ये घर आते बीवी के आगे बेवकूफ़ बन जाता है। देखिए आप माफ़ करें, आपकी बात नहीं हो रही, लेकिन ये सच है। औरत को अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ दी है कि बड़े से बड़ा अक्लमंद भी उसके कदमों में बैठ जाए, ये झूठ है या फिर हमारी हिकमत के ख़िलाफ़ है कि हम शौहरों को जान के फिर ज़बरदस्ती बदनाम करते हैं। और हज़रत मरियम कुंवारी बच्चियों के लिए एक निशानी है, गोया कि क्या पता चला कि खालिस तौबा करनी है, ईमान लाना है, कुफार और मुनाफिकों से जिहाद करना है, जन्नत के घर का सवाल करना है, शर्मगाहों की हिफाजत करनी है और फरमाबरदार बनना है। हज़रत आसिया ने ये क्यों कहा कि रब्बिब निलींदा का बैतन फिल जन्ना? आप देखिए बिल्कुल यूनिक दुआ है। अभी तक माशाल्लाह 28 पारे अब हो गए अल्लाह की रहमत से, आपने किसी नबी किसी की भी दुआ ये नहीं पढ़ी, ये इनको ख्याल क्यों आ गया? इसलिए कि फिरौन को बड़े बड़े घर बनाने का शौक़ था, बिल्डर था वो, या फिर बिल्डिंग के काम करवाता था बनी इसराइल से। उसको मान था, उसको फख्र था अपनी घरों पे और अपनी बिल्डिंगों पे। और बीबी आसिया को कहता होगा, ये देख तेरे लिए महल बना दिया, किसी ने आगरा में ताजमहल बना दिया, कुछ बना दिया, कुछ कर दिया ना। बीबी आसिया ने वही चीज़ अल्लाह से मांगी जिससे फिरौन की अना पे चोट पड़े। और बात यही है, सूरह तहरीम का पैगाम क्या है, अपनी ज़ुबान के इस्तेमाल में एहतियात रखिए। नबी की बीवियों की भी पकड़ हो जाती है अगर अल्लाह ताला उनको ऐन वक्त पे बचा ना लेता। फिर सख्त मुश्किल में भी अल्लाह से उम्मीद रखनी है और हर मुश्किल में साबित कदम रहना है, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे पारा पूरा हुआ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।